शांति। चौथी शताब्दी क्रिश्चियन धर्म में सेंट पॉल और सेंट थेकला की एक कहानी का वर्णन है। थेकला नाम की एक कन्या होती है जिसका किसी से प्यार है और उससे अब वो शादी करने वाली है। और एक दिन वो थेकला अपने घर की बालकनी में खड़ी होती है और वहां से पॉल नाम का एक संत, सेंट पॉल, जीसस क्राइस्ट को जाए हुए अभी 400 वर्ष हुए हैं और क्रिश्चियन धर्म फैल रहा है, विस्तार हो रहा है। सेंट पॉल वहां से गुजर रहा है और वो एक भजन गा रहा है, एक कीर्तन, और उस कीर्तन में वो कहता है, ही दैट इज सेलिब्रेट इज लव्ड बाय द गॉड। वो जो ब्रह्मचारी है, वो जो पवित्र है, वो प्रभु को बहुत प्रिय है। सेंट, वो जो थेकला होती है, ये गीत सुनती है कि वो जो पवित्र है वो परमात्मा को बहुत प्रिय है और वो आकर्षित हो जाती है उस गीत की तरफ। पहला दिन, दूसरा दिन फिर बालकनी में खड़ी रहती है, फिर से वो सेंट पॉल अपनी मस्ती में मगन वहां से गीत गाते हुए गुजर रहा है कि जो पवित्र है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तीसरा दिन फिर से वो थेकला वहां खड़ी है और वो गीत गाते हुए गुजर रहा है और उसे ऐसा आकर्षण होता है और ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जीवन में एक डिवाइन कॉल आ गया है, जैसे किसी ने पुकारा है, जैसे किसी की आवाज है जो मुझे पुकार रही है और मैं अब अपना जीवन इस संसार के लिए नहीं दे सकती, मेरा जीवन उस परमात्मा के लिए है। और वहीं खड़े खड़े तीसरे दिन फैसला कर लेती है कि ही दैट इज सेलिब्रेट, इसलिए मुझे अपना सारा जीवन सेलिबसी में बिताना है। जब उसकी मां को पता चलता है तो मां बहुत नाराज होती है और जब उसके होने वाले पति को पता चलता है वो भी बहुत नाराज होते हैं। वो दोनों मिलके उसको बहुत समझाते हैं, मां और होने वाला पति, परंतु अब तो वो समझने से पार थी। ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये जीवन केवल और केवल प्रभु के लिए है। वो 19 साल की कन्या दृढ़ संकल्प बन गई, दृढ़ संकल्पधारी। बहुत समझाया फिर भी नहीं समझी। आखिर फिर उसको सताने लगे, शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने लगे, उसकी मां भी और उसका होने वाला पति भी, पर वो नहीं समझी। उसे तो बस एक लगन सी लग गई थी, मुझे भी उसी जैसा बनना है। वो जो सेंट पॉल वहां से जा रहा है फकीरों के वेश में, वो जो भगवान का गुणगान करते हुए वहां से निकल रहा है, वो एक ईसाई प्रचारक, उसी के जैसा मुझे भी अपना जीवन बनाना है। साधा, ये गहने मुझे नहीं चाहिए, ये वस्त्र मुझे नहीं चाहिए, मुझे वैसा जीना है जैसे वो जी रहा है। और जैसे ही ये सब होता है, उसका पति पहले बहुत समझाता है, होने वाला पति, पर जब वो नहीं मानती है तब क्रोध, आवेश, उसकी बहुत सारी झूठी शिकायत कर देते हैं वहां के राजा को, और उसे कड़ा से कड़ा दंड देने के लिए कहा जाता है। और उस जमाने में सबसे कड़ा दंड था जला देना, जिंदा, बर्निंग एट द स्टेक जिसको कहते हैं, एक खंभा जिसमें बांधते हैं और नीचे से आग लगा दी जाती है। और उनका एक लक्ष्य यह भी था कि बाकी जो स्त्रियां हैं शहर की, वो भी सुन ले, इस तरह अगर कुछ हरकत की तो ये परिणाम होता है। इसके लिए उस थेकला को पकड़ा जाता है, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, बर्निंग एट द स्टेक, और वहां पर खड़ा कर दिया जाता है और नीचे आग लगा दी जाती है। फिर भी उसे कैसे कहते, अब भी मान जा। वो कहती है, अब मानने का तो जवाब, दो शेर उसको उसके ऊपर झपटने के लिए आते हैं, वो शेर भी बीच में आ जाती है और उन दो शेरों को बिल्कुल आने नहीं देती है। और अचानक फिर से मौसम बदलता है और फिर से वो वहां से छूट जाती है। ये दूसरा चमत्कार। और फिर दिखाया है वो कहीं दूर चले जाती है, और एक गुफा में रहती है अकेली बहुत लंबे समय तक, एकांत में अपनी साधना करते हुए। और ऐसी जब साधना करते करते उसमें ऐसी ऐसी सिद्धियां आ जाती है कि दूर दूर से उसके पास लोग आने लगते हैं और वो सबको ठीक करने लगती है। शफा उसके हाथ में आ जाती है उसके उस प्यूरिटी की पावर से। दूर दूर से जो भी आता है वो बस हाथ रखती है और वो लोग ठीक होने लगते। अब तीसरा पेपर। अब उसकी आयु लगभग 70 या 80 वर्ष की हो चुकी है, पर वहां के जो लोग होते हैं, लोकल डॉक्टर्स, उनको ईर्ष्या होने लगती है कि सारे मरीज इसी के पास जा रहे हैं और जो भी इसके पास जाता है ठीक हो जाता है, इसके पास पता नहीं क्या शक्ति है। और वो सब एक प्लॉट करते हैं, स्कीम, एक षड्यंत्र। ऐसे 3 बदमाश नवयुवकों को चुनते हैं और कहते हैं, जब उनको पता चलता है ये इससे क्यों हो रहा है, कैसे, इसमें कौन सी शक्ति आया है जो ये हरेक को ठीक कर देती है, और उनको पता चलता है ये जो पावर है ये इसका ब्रह्मचर्य है। वो ऐसे 3 व्यक्तियों को तैयार करते हैं, कहते हैं जाओ और उसका शील भंग करो। और वो 3 व्यक्ति जाते हैं और दिखाया है वो गुफा में थेकला है, वो सामने से आ रहे हैं, वो पीछे 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 हटती है। और दिखाया है, ये कहानी कितनी सत्य है पता नहीं, परंतु दिखाया है वो गुफा आज भी है टर्की में सेंट थेकला के नाम से। वो पीछे जाती है और उस पूरी गुफा में समा जाती है। जैसे भारत में 3 लोग ऐसे दिखाए हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई, वो सदेह शरीर सहित समा गए। कितना सत्य है, ड्रामा प्लान अनुसार ऐसा हो नहीं सकता, पर किंवदंतियां, वो सत्य है या नहीं इससे ज्यादा महत्व नहीं है, परंतु पावर दिखाई है प्यूरिटी की, कि धीरे धीरे पीछे जाती है, वो सामने आती है और वो शरीर सहित समा जाती है उसमें। और इस कहानी को कहा जाता है द स्टोरी ऑफ सेंट थेकला एंड सेंट पॉल, जो क्रिश्चियनिटी में बहुत प्रसिद्ध है। वो उदाहरण दिखाते हैं कि सेंट थेकला की जैसी प्यूरिटी थी, बहुत हाई लेवल की प्यूरिटी थी, अनटच्ड। भारत में ऐसे 3 लोग हैं, कौन, जो शरीर सहित समा गए एक तो महाराष्ट्र के ही है, एक तो मीराबाई, मीराबाई का लिए दिखाया है, ऐसा हो नहीं सकता पर दिखाया है कि वो शरीर सहित मंदिर में समा गई। दूसरा, मीराबाई का मृत्यु का कोई वर्णन नहीं है। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु शरीर सहित समा गए। और तीसरा, संत तुकाराम। ये तीन ऐसे हैं, तीन ही हैं जिनके लिए ऐसी कहानियां हैं, मृत्यु का कोई वर्णन नहीं है। वो कहते हैं वो तो पुष्पक विमान आए, आमी जा तो आमचा घरी, और वो चले गए उसमें बैठकर। तो कहने का भाव, जीवन में निर्णय, द लास्ट डिसीजन। कुमारियों का टॉपिक क्या है? द लास्ट डिसीजन, अंतिम निर्णय। एक समय आता है कि जब हमको निर्णय लेना होता है कि क्या करना है। ऐसे चौराहे पर हम खड़े हो जाते हैं, कहां जाऊं, इधर 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 इधर, कहां जाऊं, इधर नौकरी है, इधर घर है, इधर सेंटर है, उधर मधुबन है, इधर और भी कुछ है। जैसे दिखाया है वो, उसको सेंट की पदवी मिली, थेकला को सेंट की पदवी मिली, सेंट थेकला कहा जाता है उसे। और उनमें भी हजारों लाखों में ऐसी एक निकलती है जो ऐसी दृढ़ संकल्पधारी थी। और जो चमत्कार दिखाए, सच है झूठ है उससे ज्यादा महत्व नहीं है। हो सकता है सभी की वदंती है और झूठ है और बाद में बनाए गए। जैसे मीरा के लिए कुछ लोग कहते मीरा थी ही नहीं। मीरा के जितने अभंग है, जितनी कहानियां हैं, जितने भजन है, वो उसके लिखे नहीं है, किसी और ने लिखे, ऐसा भी कहा जाता है। अगर हिस्ट्री के डिटेल में जाओ तो बहुत निराशा होती है, बहुत चोट पहुंचती है अंदर। तो मुख्य है निर्णय, द लास्ट डिसीजन, द फाइनल डिसीजन। और ये निर्णय हर एक को लेना होता है कि मुझे क्या करना है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे, जीवन में महत्वपूर्ण जब निर्णय लेना है तो उसकी क्या विधि है, क्या स्टेप्स है। महत्वपूर्ण डिसीजन बहुत सारे होते हैं, और जब भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, एक बात हमेशा याद रखना है, वो डिसीजन अमृत वेला लिया जाए, योग के समय। दिन भर सोचते रहना ये करूं या ना करूं, दिन भर नहीं सोचना, दिन को छोड़ दो। सुबह सुबह उठकर कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है जीवन का, वो लेने का टाइम क्या है? अमृत वेला। कोई भी डिसीजन अमृत वेला ही लेना है, जिसमें बाबा को हम साथ सामने देखे और सारी बातें बताए और फिर वो डिसीजन ले। तो डिसीजन, द फाइनल डिसीजन, क्या करना है? ब्रह्मा कुमारी में जाना है या गृहस्थी में जाना है? उधर जाऊं या उधर जाऊं, कहां जाऊं? कल भी कहा था, दोनों तरफ आग है, इधर जाओ या उधर जाओ, आग दोनों तरफ है, जलना दोनों तरफ है, इधर भी जलना है और उधर भी जलना है। अंतर क्या है? संसार के मार्ग में जल जल के, जल जल के, जल जल के, जल जल के, अंतिम में क्या बचता है? राख। और अध्यात्म के मार्ग में जल जल के, जल जल के, अंत में क्या बचता है? क्या बन जाते हो? जहान के नूर। और हर एक को यह डिसीजन लेना होगा। तो डिसीजन जब लेना हो जीवन में, कोई भी डिसीजन, और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, जीवन का फैसला करना है, क्या करूं इसके साथ, तब कुछ स्टेप्स है। सबसे पहली स्टेप, कम से कम 10 हम ऐसी स्टेप्स निकालेंगे। सबसे पहले जिनकी डायरिया पीछे है वो ले सकते हैं, अभी योग पूरा हुआ तो डायरिया ले लो, जो पीछे रखी थी आजू बाजू रखी थी। तो पहली स्टेप, जो निर्णय लेना है, जिस विषय के बारे में निर्णय लेना है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। क्या करना है? सारी सूचनाएं कलेक्ट करनी है, ये फर्स्ट स्टेप है। और वो सारी सूचना एक जगह लिखो कि मुझे, जैसे एक निर्णय है, कोई एक आत्मा सोचती है कि मुझे ये जॉब करना है, ठीक है, वो जॉब कहाँ है, वो जॉब कैसा है, उसमें सैलरी कितनी है, वो डिस्टेंस कितना है, जाऊं कैसे, सारी रिलेटेड सारी सूचनाएं इंफॉर्मेशन सब एक जगह लिखनी है, जब भी कोई निर्णय करना हो तो। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, ऑप्शंस लिखना कि मेरे पास कितने ऑप्शंस है, घर पे रहूं या और कहीं रहूं, पढ़ाई करूं, आगे की पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, इतना काफी है कि इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ करूं, कुछ डिस्टेंस एजुकेशन करूं, या सब कुछ बंद करके अभी बहुत हो गया, कुछ नहीं करना है। सारे ऑप्शंस लिखना, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से मुझे क्या करना है, आगे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई बंद करनी है, कुछ और जॉब करना है, या घर पे ही रहना है, या किसी और जगह पर जाना है, या इसी स्थान पर रहना है। सारे ऑप्शंस, पहला सारी सूचनाएं एकत्र करो, दूसरा सारे ऑप्शंस लिखो, ये है, तीसरा रिजल्ट, फ्यूचर पर इसका क्या परिणाम होगा। अगर मैं अभी ये सोचती हूं कि मुझे अगले 3 साल और पढ़ना है, ठीक है, पढ़ाई करनी है, सभी कुमारियों के लिए, ये क्लास कुमारियों की है, बहने खाली बैठ के सुनना है पीछे, तो 3 साल मुझे ये करना है, इसका मेरे भविष्य पर क्या परिणाम होगा, परिणाम क्या है भविष्य पर, इसका चिंतन करना है। ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप, दूसरों पर इसका क्या परिणाम होगा, अगर मैं ये निर्णय लेती हूं तो मेरे जो घर वाले लोग हैं उन पर इसका क्या परिणाम होगा, क्या उनको कुछ फर्क पड़ेगा या बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं आज ही सेंटर चली जाती हूं हमेशा के लिए तो घर में किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला है, हाँ या ना। अगर मैं पढ़ाई के लिए भारत के किसी स्थान पर जर जाती हूं या विदेश में ही चली जाती हूं तो घर पे किसी पर परिणाम पड़ने वाला है, कुछ इफेक्ट होने वाला है या कुछ नहीं होने वाला, अगर होने वाला है तो कौन सा प्रभाव है, इसकी भी थोड़ी स्टडी करना। हम निर्णय ले रहे हैं, एक महत्वपूर्ण निर्णय, और कोई भी निर्णय आवेश में कभी नहीं लेना है, टाइम देना है अपने आप को, धीरे धीरे निर्णय लेना होता है कोई भी। आवेश में जो निर्णय लेते हैं वो फिर पछताते हैं, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है जीवन के। तो रिजल्ट, परिणाम देखना है, मेरे जो लोग हैं जुड़े हुए, मुझसे जुड़े हुए लोग, उन पर इसका क्या परिणाम होगा। कभी अच्छा भी परिणाम हो सकता है, कभी बुरा भी परिणाम हो सकता है। जैसे एक कुमार था, एकदम पक्का कुमार, उसके पिताजी माताजी उसको कहने लगे शादी करो शादी करो, वो कहता था नहीं नहीं नहीं, बहुत उसने समझाया उनको पर वो बिल्कुल नहीं माने, और जबरदस्ती उसकी शादी किया, उसने कहा भी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, फिर भी कही कि, और वो शादी के बीच से भाग गया फिर, और जैसे ही भाग गया पिताजी को वहीं पे हार्ट अटैक आ गया और डेथ हो गई। क्या होगा ये बता नहीं सकते, इसके लिए डिसीजन मेकिंग जो है बहुत डेलिकेट, नाजुक प्रक्रिया है, इस पे ये भी देखना है इन पर क्या परिणाम होगा। ये जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, इस निर्णय का इन पर क्या परिणाम होगा। इसके पहले बताया भविष्य पर क्या परिणाम होगा, भविष्य और नेक्स्ट मेरे साथ जुड़ी हुई आत्माएं। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग की, वर्स्ट क्या क्या हो सकता है, सबसे बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अगर मैं ये कर लूं तो वर्स्ट सिचुएशन क्या आ सकती है। मैंने ये निर्णय कर लिया कि मुझे अगले 2 साल पढ़ाई करनी है, क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, उसके बारे में चिंतन कर लेना। मैं ये सोचता हूं कि मुझे इस शहर को छोड़कर बड़ी जगह जाना है, मुंबई में जाना है, दिल्ली में जाना है, वहां कुछ जॉब करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, भोजन का क्या होगा, कहां से भोजन आएगा, खुद बनाऊं या सेंटर पर रहूं या कहीं कमरा लेके रहूं, बाहर रहूं, क्या करूं, वर्स्ट क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम खराब से खराब, अगर ये निर्णय ले लिया इससे खराब से खराब क्या होगा, उसके बारे में भी सोचना है, वर्स्ट सिचुएशन। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप जो पहले भी बताया, डिसीजन इंटेलिजेंट हो, इंपल्सिव ना हो, इंग्लिश में शब्द है इंपल्सिव, इंपल्सिव अर्थात बिना विचार किए जोश जोश में आके निर्णय ले लिया, फिर पछताना पड़ता है। और जो एक बार निर्णय ले लिया, नेक्स्ट स्टेप, फिर जीवन में हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। एक बार ऑप्शन बी ले लिया कि फिर अब ये मत सोचो कि ऑप्शन ए लिया होता तो कितना अच्छा होता। जैसे वो एक भाई शांतिवन का, सारी जिंदगी भर सेवा की, बहुत सेवा की, 30 साल तक सेवा की, पर ज्ञान और ये 0, ज्ञान और योग में कोई रुचि नहीं, केवल सेवा 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 सेवा, सुबह से लेकर रात तक सेवा। और एक दिन बीमार पड़ गया, ऊपर एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, 2-3 दिन सेवाधारी था, फिर सेवाधारी घर चला गया, फिर 2-3 दिन कोई भी सेवाधारी नहीं, और फिर इतना दुखी होने लगा, इतना दुखी, इतना बेचैन। वो सोचता था, कहता था, इससे तो अच्छा मैंने शादी कर ली होती, इससे तो अच्छा मेरे आज बच्चे होते तो मेरी देखभाल करते। ये यहां चला गया पूरा निगेटिव में, और इसी दुख में शरीर छोड़ा, बाबा और बाबा की याद 0, कहीं नहीं। ऐसा ना हो जाए हमारे साथ। तो जो भी डिसीजन लिया जाए कैसा हो, इंटेलिजेंट डिसीजन हो। अगला, राय लो लोगों से, पूछो जो अनुभवी है उनसे पूछो क्या किया जाए इस परिस्थिति में, मुझे कहां रहना चाहिए, यहां रहूं कि ये पढ़ाई छोड़ दूं या और कुछ करूं। राय सभी से लेनी है, पर जरूरी नहीं है कि वो जो कहे वो करना है। जैसे मैंने कहा, कोई भी डिसीजन अल्टीमेट जो लेना है, कम से कम 5 से 6 अमृत वेला गुजरने चाहिए डिसीजन ले लिया। सुबह अमृत वेला बाबा से पूछो क्या करो, ये मैं डिसीजन ले रहा हूं, ले रही हूं, सही है कि नहीं सही है। फिर बाबा की टचिंग आएगी, और ये बाबा की टचिंग है या मेरे विचार है, इसको कैसे अलग करेंगे। मुझे लगता है कि मैं जाकर ब्रह्मा कुमारी बन जाऊं, और हम कहें कि हां मुझे बाबा की टचिंग आ गई है, कैसे माना जाएगा ये अपने विचार है या बाबा की टचिंग है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने इसका प्रश्न उत्तर दिया था, डबल फॉरेनर्स ने बाबा से पूछा था, बाबा कैसे पता करें कि ये आपकी टचिंग है या हमारे विचार है। बाबा ने 3 उत्तर दिए थे, यदि बाप की टचिंग है तो सबसे पहला स्पष्ट होगी, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा माइंड में, इतनी स्पष्ट टचिंग होगी वो कि मुझे यही करना है बस, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा उसमें, इतनी क्लियर कट क्लैरिटी होगी उसमें। दूसरा पावरफुल, बाबा की जो टचिंग होगी वो इतनी पावरफुल होगी, इतनी पावरफुल होगी कि हमारे विचारों से बहुत परे है, हम तो इतना सोच ही नहीं सकते थे, इतनी शक्तिशाली वो टचिंग होगी। और तीसरा, अगर वो बाबा की टचिंग है तो 100% सक्सेसफुल, सफलता उसमें होगी। अगर पहले दो हो गए और तीसरा नहीं हुआ तो शायद बाबा की टचिंग नहीं थी, वो हमारे ही विचारों का प्रक्षेपण था, प्रोजेक्शन था। CSP क्लैरिटी अर्थात स्पष्टता, S सक्सेसफुल, P पावरफुल, बाबा की टचिंग अर्थात CSP, ये तीन चीजें होनी चाहिए तब बाबा की टचिंग है, नहीं तो वो हमारे ही विचार है, हम ही सोचते रहते हैं अंदर से और फिर कहते हैं हाँ मुझे बाबा ने कहा, सुबह सुबह अमृत वेला बाबा की टचिंग हो गई, बाबा की टचिंग नहीं थी वो। तो कोई भी निर्णय कैसा हो, इंटेलिजेंट हो, इंपल्सिव ना हो, बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर लेना और फिर पछताते रहना ऐसा क्यों किया। और हम बात कर रहे थे जब दो ऑप्शन है जीवन में, बी चुन लिया, अब ये भूल जाओ ए था बी, ए था ही नहीं, ए खत्म हो गया, अब इसी में जो कुछ करना है, जो होगा मेरे जीवन में इसी में मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि हमने देखा है मेडिकल में कई बार, हमारा एक दोस्त था, सबसे पहले उसने PG की पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्किन मिला उसको, डर्मेटोलॉजी, चमड़ी विशेषज्ञ, 6 महीना काम किया, बोर हो गया, ये भी कोई प्रोफेशन है, खाली लोगों की चमड़ी देखते रहो, ट्रीटमेंट लिखते रहो, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है उसमें। फिर उसने उसको छोड़ा और DM की तैयारी की, कार्डियोलॉजिस्ट, और DM की एग्जाम पास कर दी और कार्डियोलॉजिस्ट बन गया। KEM हॉस्पिटल गया मुंबई, वहां पर इतना काम, इतना काम, इतना काम, एक एक दिन में 100 200 300 300 पेशेंट, एक बार बैठो OPD में कि निकल ही नहीं सकते बाहर, हेडअप हो गया, कहता ये नहीं चाहिए मुझे कार्डियोलॉजी, छोड़ दिया कार्डियोलॉजी को। फिर सोचा मुझे कुछ और चाहिए, एक्साइटमेंट, फिर ऑर्थो किया, फिर ऑर्थो में पास कर लिया, ऑर्थोपेडिशियन बनना, ऑपरेशन करते करते उसमें भी बोर हो गया, ये भी नहीं करना है, अभी अपने गांव में जनरल प्रैक्टिशनर है फेमस टॉप मोस्ट, ये तो तब भी कर सकता था MBBS के बाद, इतनी लंबी प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी, 5-6 साल लगा दिए, ये किया फिर वो छोड़ा, वो किया वो छोड़ा, वो किया वो छोड़ा, कहीं पर भी स्टेबल नहीं है। एक बार आ गए जिस जगह पर, बस अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, सेंटर पर आ गए, अब घर समाप्त, भस्म हो चुका है, अब यही है। जैसे कन्याओं के लिए कहते हैं ना कि डोली पिता के घर से निकले और जनाजा पति के घर से, डोली पिता के घर से और जनाजा पति के घर से, बस दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार चुन लिया कोई बात, फिर अब सोचना नहीं वो क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या, ये कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता, अब वो ऑप्शन खत्म हो गया, एक बार कूद गए तो कूद गए, नाउ डोंट थिंक ऑफ ऑप्शन ए। इसलिए कहा इंटेलिजेंट डिसीजन हो, और कई सारे अमृत वेला उसका चिंतन करना है, दिन भर डिसीजन करने से कई बार गलती होती है क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं है, विचार शक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं है, कमजोर है, अमृत वेला पावरफुल होते हैं, और उसमें भी अगर डिसीजन लेना है तो हम तो कहेंगे कि बेस्ट टाइम है 3:30 से पहले, 3:30 नहीं, 3:30 बजे तो ब्राह्मणों का उठने का टाइम है, डिसीजन तब लेना है जब ब्राह्मण भी सोए पड़े हैं, शक्तिशाली वायुमंडल, उस मौन में, उस एकांत में, उस रात के सन्नाटे में डिसीजन लेना होता है, जहां कोई आवाज नहीं है, बिल्कुल निस्तब्धता है। अर्ली मॉर्निंग उठकर बाबा के सामने बैठकर संपूर्ण स्वयं को समर्पित कर और फिर डिसीजन लेना है क्या किया जाए। अब बताओ, आप बताओ मुझे मैं क्या करूं, ये परिस्थिति है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, कहां जाऊं। और जीवन तो सारा डिसीजन ही डिसीजन है, सुबह से लेकर रात तक निर्णय ही निर्णय करने पड़ते हैं। तो ऑप्शन बी लेने के बाद यह भूल जाना ऑप्शन ए भी था। जैसे ब्रह्मा कुमारी जीवन के तीन नियम है सेंटर कर आने के बाद। पहला, कट द ब्रिजेस। पहला नियम, पुल को काट दो। आर्मी में यहां से यहां जाना है आर्मी को, तो यहां पर एक पुल बांधते हैं, ब्रिज, और एक बार इधर आ गए कि पुल को काट देते हैं ताकि वापस जाने का कोई चांस ना हो। कट द ब्रिज। इधर से इधर आने के बाद क्या करते हैं, पुल को काट देते, जिंकू कि वह मरू। अब वापस भाग के नहीं जाएंगे, हम वहीं मरेंगे या जीतेंगे। एक बार इधर आ गए, कट द ब्रिज। अब उस संसार से कोई लेना देना नहीं है, अब उस घर से कोई लेना देना नहीं है, अब उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब यही दुनिया है, यही संपूर्ण है, यही सत्य है, यही सब कुछ है। पहला नियम। दूसरा नियम, ड्राउन द बोट, नाव को डुबो दो। यह दूसरा नियम है। उस किनारे से इस किनारे जिस नाव में बैठकर आए थे, इस किनारे उतरने के बाद उस नाव को डुबो दो ताकि वापस उस किनारे में जाने का कोई सवाल ही नहीं आए। उधर से इधर आ गए, ड्राउन द बोट। तीसरा नियम, थ्रो द लैडर। सीढ़ी से चढ़कर नीचे से ऊपर आए, ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी को उठाकर फेंक दो ताकि नीचे वापस ना आए। कट द ब्रिज, ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर। एक बार आ गए, बस यही जीवन है। अब जो होगा यहां होगा, जो होगा जैसा होगा यहां देखेंगे। तो डिसीजन में जब दो ऑप्शन है ए और बी, एक चुन लिया बहुत सोच समझ के, तो फिर दूसरे को भूल जाना, ये अगली स्टेप है डिसीजन मेकिंग की। उसके बाद में फाइव क्वेश्चन टेक्निक जिसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग में, पांच प्रश्न पूछना, क्या, क्यों, कैसे, किसका, कहां। जो भी प्रश्न डिसीजन है, ये सारे प्रश्न पूछना, क्यों, क्यों मैं ये डिसीजन ले रहा हूं, किस लिए ये डिसीजन ले रहा हूं, किसके लिए ये डिसीजन ले रहा हूं, कब डिसीजन ये लेना है, कहां ये डिसीजन लेना है। ये तीन चार प्रश्न है, कब, क्यों, कहां, कैसे, अपने आप से एकांत में बैठकर पूछना, मैं क्या करूं, व्हाट, क्या करना है, क्यों, क्यों करना है, कैसे, हाउ, कैसे करना है। सोच तो लिया ये करना है, अब कैसे करूं, किससे मिलूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुझे राय देगा। और राय हमेशा ऐसे व्यक्ति से लेना जो थर्ड पर्सन है, एकदम डिटैच्ड है, आपसे उनसे कोई ज्यादा लेना देना नहीं, एकदम नॉन जजमेंटल है। जो उस व्यक्ति से अगर पूछो तो वो व्यक्ति स्वार्थवश कुछ बताएगा, ऐसा करो वैसा करो। ऐसे व्यक्ति से हमेशा राय लेनी है कि जो थर्ड पर्सन है, जिसको हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई ज्यादा लेना देना नहीं, जो कहीं दूर है, हो सकता है वो कुछ ऐसी बात बता दे कि उसमें हमारे प्रश्न का उत्तर हो, परंतु फाइनल उत्तर तो हमें अपने ही मन से मिलने वाला है, कहीं से भी उत्तर नहीं मिलने वाला है। फाइनल आंसर जो है सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है, और इसलिए कहा सारे निर्णय अमृत वेले ही लेना है, दिन भर में नहीं लेते रहना है, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, और फिर पछताते, फिर सोचते ये नहीं करना चाहिए था, वो कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। एक अमृत वेला त्याग करना पड़ेगा योग के प्रयोग करते करते, योग को बाजू में रखकर ये करना पड़ेगा। ये भी वैसे योगी है एक रीति से, जिसमें हम जीवन का फैसला कर रहे हैं, क्या करूं। वो तो मम्मा थी जिसने एक सेकंड में जीवन का फैसला कर लिया, ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता है। फिर सबको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। यज्ञ तब कुछ और था, अब कुछ और है। और एक बार निर्णय ले लिया, नेक्स्ट स्टेप, अब उसकी प्लानिंग बनाओ। अगले 2-3 साल की क्या प्लानिंग है, चाहे सेंटर पर रहने जा रहे हैं, नेक्स्ट 3 ईयर्स में मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, चाहती हूं, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते करते क्या ये ज्ञान योग हो सकता है अच्छे से, क्या मेरी वो स्थिति हो सकती है या कुछ और। और हमने देखा है वर्तमान में आत्माओं में बहुत सारी इच्छाएं हैं, परंतु सारे मां बाप और ज्ञान में चलते। अभी अभी कुछ समय पहले ज्ञान सरोवर में पेरेंट्स रिट्रीट होती है, इंटरनेशनल पेरेंट्स रिट्रीट, जहां पे जितने बीके पेरेंट्स है, माता पिता, वो उसमें आते हैं सारे विश्व भर के, और बहुत सारे प्रश्न उत्तर होते हैं उसके। हम पिछले 2-3 साल से उसमें जा रहे हैं और इतने प्रश्न पूछते हैं, वो इतने प्रश्न पूछते हैं और बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न होते हैं उनके। हर एक माता पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी ब्रह्मा कुमारी बन जाए और सीधा सेंटर चली जाए, पर बेटी को कुछ और इच्छाएं हैं। उसको इंतजार है कोई राजकुमार घोड़े पर बैठकर आएगा और मुझे ले जाएगा, और मम्मी चाहती है कि ये सेंटर चली जाए, और ना भी नहीं कह सकती। और फिर मम्मी की इच्छा के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देती है और फिर वहां पहुंच जाती है और फिर वहां पर दुखी हो जाती है। फिर अगर डिसीजन लेना है इस जीवन का, तो ये जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। अपने मन को समझाना पड़ेगा कैसे यही जीवन एकमात्र जीवन है, इससे बड़ा और कोई जीवन है ही नहीं संसार में। अगर जबरदस्ती की तो ये एक ब्रह्मा कुमारी बहन का लंबा चौड़ा मैसेज, अभी अभी समर्पण हुआ है 6 मास, और अभी उसको ये सारी इच्छाएं हैं संसार की, अननोन नंबर है, हमने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। बहुत सारी चीजें लिखी उसने कि ऐसा लगता है ये चाहिए वो चाहिए, कॉलेज के पुराने दोस्त याद आ रहे हैं, I want to dance, I want to drink beer, I want to enjoy like a mad person, I want to wear color clothes, I want physical touch, I want a hope, I want a hug, I want someone who will take me on a good path। और वो ये भी लिखती है, अगर मेरे सामने कोई भाई आ जाए, व्यक्ति आ जाए, तो I will hate, मुझे घृणा है उससे, परंतु मैं क्या करूं, मेरे अंदर ये सब हो रहा है। आई वॉन्ट टू प्ले कैरम, आई वॉन्ट टू डिजाइन इन्विटेशन कार्ड्स, परंतु मुझे इन सब चीजों से वैराग्य है। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, पर यदि कोई भाई मेरे सामने आता है तो मुझे एकदम नफरत होती है उससे, बिकॉज आई लव प्यूरिटी। सब कुछ है, वो कहती है सब कुछ मुझे रिस्ट्रिक्शन लगता है, आई नीड अ सॉल्यूशन। ये भी है, वो 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 भी है, सब मिक्स है। ये भी करना है, वो भी करना है, टीवी भी देखना अच्छा लगता है और संसार से वैराग भी है। देवियों को देखती हो तो देवी जैसा बनना है, मैं दुर्गा हूं, और फिल्में देखती हो तो मुझे फिल्म एक्ट्रेस जैसा बनना है। बैलेंस है, लौकिक इच्छाएं भी बहुत है, दबी हुई सारी, सारा परिवार ज्ञान में, माताजी से लेके घर में गीता पाठशाला चलती है, बचपन से ज्ञान सुन रहे हैं, परंतु इच्छाएं दबी रह गई सारी। अभी बहुत बड़ा समर्पण हुआ, उसके बाद ये सारी इच्छाएं बाहर निकल रही है। इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है। और एक बात,
कोई भी डिसीजन लेते हैं दो कॉलम बनाने, फायदा नुकसान। कोई भी डिसीजन लेते समय दो कॉलम बनाने हैं, इस करने से फायदा क्या है और नुकसान क्या क्या है। तो ब्रह्मा कुमारी बनने के नुकसान क्या क्या है? कुमारिया कोई है क्या नुकसान कि फायदे ही फायदे है? सही सही बोलो, कितने फायदे? कौन कौन बोलता है फायदे, जरा हाथ खड़ा करना। पीछे से बहनो अच्छे से देख लो, ये वो कन्या है जो कहती है बहुत फायदे है, इनका फोटो लेना पड़ेगा एक। चाहे कितनी भी अच्छी बात हो, हमेशा उसके दोनों पहलुओं के बारे में सोचना, ये फायदे ये नुकसान। नुकसान इसलिए नहीं कि वो खराब चीज है, मेरे लिए क्या नुकसान है ये सोचना है पर्सनल। शायद हो सकता है अभी वो समय आया नहीं है, थोड़ा वेट करो, अपने आप को और थोड़ा सा मैच्योर बनाओ, नहीं तो ये अवस्था होती है, मुझे ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, सब दमन हो गया, इच्छाएं सब दब गई। हमारे ओपीडी में बीच में दो कन्याएं आई थी, एक कन्या उसको दूसरी कन्या को लेके आई, कहने लगी ये मधुबन जब भी आती है दो दो घंटे में भूख लगती है इसको, खाऊं 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 क्या खाऊं क्या खाऊं, और दोनों सेंटर पर रहती है, अब खाऊं अब खाऊं अब खाऊं अब खाऊं क्या खाऊं। हमने कहा क्यों इतनी क्यों भूख लगती है इसको, उसने कुछ बताया नहीं, उसने कहा कि बीमारी है ट्रीटमेंट करो आप। अब क्या ट्रीटमेंट करें इसकी, सारा जांच किया सब नॉर्मल, और फिर काउंसिलिंग के लिए भेजा, और फिर पता चला कि वो जिस सेंटर पर रहती है वहां एक एक चीज गिन गिन के है, लड्डू पांच बने तो पांच के पांच रहने चाहिए, दूसरे दिन एक भी कम हुआ तो अदालत कोर्ट मार्शल होता है। इसके लिए उसने अपने आप को वहां एडजस्ट कर लिया, अपनी सारी इच्छाओं को दबाने कर, और उसको खाने की बहुत इच्छा है पर वहां खा ही नहीं सकती क्योंकि चीजें टोली टोशा गुलाब जामुन गिन गिन के रखे हुए है, एक भी इधर उधर हुआ तो किसने खाया। इसलिए जब मधुबन में आती है तो खुला मैदान है, क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, इतना खाऊं इतना खाऊं। अभी अभी भोजन किया, कमरे में टोली चाहिए, फिर टोली खाई, फिर चाय पिया, फिर और टोली खाई, फिर ब्रेक, फिर सैंडविच खाया, फिर रात में भोजन खाया, रात को फिर खाया, सुबह दो बजे उठ के फिर भूख लगती है, खाऊं 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 पेट में बलाऊं। जहां जहां दमन होगा वहां एक दिन सुनामी आएगा, जहां जहां इच्छाओं का दमन होगा वहां सुनामी आएगा, ऐसा भयंकर कि सब कुछ डुबो देगा। इसके लिए अपने आप को देखो, मेरे अंदर कौन सी इच्छाएं हैं, है तो स्वीकार करो ये है, और फिर उसको तोलो। अच्छा ये इच्छा है, किसी के साथ घूमने की इच्छा है, किसी की बाइक के पीछे बैठ के जाने की इच्छा है, डांस करने की इच्छा है, किसी मॉल में जाने की इच्छा है, रंगीन कपड़े पहनकर नाचने की इच्छा है, अपने दोस्तों के साथ फिल्मों में जाने की इच्छा है, आए ठीक है कोई इसमें कोई खराब बात नहीं है, स्वीकार करो है, क्योंकि संसार का वायुमंडल ही ऐसा है, ये सारी इच्छाएं है। अब ज्ञान को प्रयोग करो वहां पर, ये कर लिया क्या मिला, दुख। हमारा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, एक बॉयफ्रेंड मिल गया ठीक है, और धोखा देके चला गया तो फिर दुख। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जमाना है, उसको तर्क से देखो। सुबह की मुरली थी दिव्य बुद्धि, हमारे पास दिव्य बुद्धि है, दिव्य बुद्धि से जज करो, और कोई भी चीज का दमन नहीं करना है, उसकी व्यर्थता को समझना है तो अपने आप छूट जाएगी। किसको पकड़ के रखूं, जो व्यर्थ है उसको पकड़ू, जो निगेटिव है उसको पकड़ू, उससे क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। जब चीजों की व्यर्थता समझ जाती है, अपने आप चीजें छूट जाती है। जब झाड़ के पत्ते सूख जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, उसको गिराने की जरूरत नहीं होती है, वो व्यर्थ हो गई है। जैसे हम ज्ञान में आते ही सबसे पहले जितने ब्राह्मण एक धारणा तुरंत करते हैं, पहले ही दिन बाहर का खाना बंद कर देते। कैसे? यह होती है किसी को इच्छा कुमारियों को, मार्केट से जाओ तो गुलाब जामुन, नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है, उधर मैं नहीं देखूंगी, उधर कचोरी, अरे मैंने मुझे नहीं देखना है, ऐसी इच्छा होती है क्या? क्यों? जान लिया व्यर्थ है, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं, हमको उधर जाना ही नहीं है, तुरंत त्याग हो गया, उसमें कुछ भी दमन नहीं हुआ। परंतु विकारों के लिए दमन हो जाता है, इच्छाएं है संसारिक और जो दबी रह जाती है। और फिर ब्रह्मा कुमारी जीवन में आगे आगे बढ़ते हैं और फिर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद सब बाहर निकलने लगता है। फिर कोई चाहिए, बीमार पड़ो तो कोई भाई आके इधर हाथ अगर रख दे तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता तो बीमार पड़ो, और जब बीमार पड़ते हैं तो ध्यान देते हैं। फिर मेडिकल में इसको हिस्टीरिया कहते हैं, अटैक्स आते हैं बेहोशी के, कुछ सुंगाओ तो उठ के बैठता है फिर पेशेंट, नाटक डोंग, शक्तिशाली बनना है, तर्क का प्रयोग करना है, ज्ञान को अप्लाई करना है, और एक एक इच्छा का अन्वेषण करना है, विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है कि ये मुझ में इच्छा है, इस इच्छा का मैं क्या करूं। और जो भी योग के मार्ग पे जाएगा उसको ये सारी इच्छाएं आएगी। जैसे एक सन्यासी कितने सालों से तपस्या कर रहा है, संसार छोड़ दिया, जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा है, और अचानक एक दिन मुझे जिलेबी खानी है, अचानक इच्छा हो गई, खुद को समझाए जिलेबी, वो तो मैंने सब छोड़ दिया, पर वो जिलेबी घूम रही है योग में, ध्यान में, जिलेबी 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 जिलेबी, वो क्या करे अब, जिलेबी घूम रही है, योग करने जा रहा है, ध्यान करने जा रहा है अपनी विधि से, जिलेबी छोड़ ही नहीं रही है पीछा। आखिर परेशान हो गया, क्या करूं, गया मार्केट, जिलेबी खरीदी वहां से, लेके आया जंगल में, और अपने मन को कहा, अरे मन तुझे जिलेबी चाहिए ना, खा, और एक एक लिया और सीधा मिट्टी में फेंक दी, उठाई और मिट्टी में फेंक दी। कोई भी इच्छा का दमन ना हो। इच्छा को इंग्लिश में शब्द है सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, पवित्रीकरण। मटेरियलिस्टिक डिजायर जो है, सांसारिक इच्छाओं का क्या करना है, दमन नहीं, और ना ही उसको फुलफिल करना है। दोनों ही खतरनाक मार्ग है, एक है भोग, एक है दमन। भोग करो तो पश्चाताप, दमन करो तो बेचैनी। क्या करें? तीसरा मार्ग है समझ, ज्ञानमयी प्रेममयी समझ। समझना है उस इच्छा को, और उस इच्छा को सब्लिमेट कर देना, उसका स्वरूप ही बदल देना, तब फिर वो सताएगी नहीं हमको, पागल नहीं करेगी। December 1979 अव्यक्तवाणी, एकमात्र अव्यक्तवाणी है ऐसी जिसमें बाबा ने कहा है कि तुमको विकारों को जीतना नहीं है। एक ऐसी अव्यक्त अद्भुत अव्यक्तवाणी है ये, जिसमें बाबा ने कहा है तुमको उनको परिवर्तन कर देना है, विकारों का क्या करना है, परिवर्तन। उदाहरण दिया कि यदि तुम किसी राजा को बंदी बनाते हो तो वो एक दिन बदला लेगा। इसलिए उस मुरली में 5 विकारों का एक एक करके वर्णन है। काम को दबाव नहीं, दमन नहीं कहो, काम का परिवर्तन कर दो, काम को शुभ कामना बना दो। क्रोध की जो अग्नि है उसको लगन की अग्नि में परिवर्तित कर दो। ऐसे 5 का वर्णन उसमें बहुत विस्तार से किया है कि विकारों को दबाना नहीं है, विकारों जीत नहीं बनना है तुमको, विकारों पर के परे निकल जाना है, उसका रूप ही बदल देना है, फिर वो सताएंगे नहीं तो पागल करते रहेंगे जीवन भर। तो कोई भी निर्णय अगर जीवन में करना है तो ये सारी बातें जिनको ध्यान में रखते हुए करना है। कोई भी निर्णय दमन वाला निर्णय ना हो, सप्रेशन वाला निर्णय ना हो। हमारे पास एक कन्या आई थी, उसको बहुत सारी बीमारियां थी, कभी ये दुखता है, कभी वो दुखता, कभी ये दुखता, कभी पैर, कभी सिर, कभी पेट, और घर पे रहने वाली, सेंटर नहीं गई, और इतनी मोटी फाइल थी उसके पास, और सारे टेस्ट किए थे, सब कुछ नॉर्मल, कहीं पर भी कुछ भी बीमारी नहीं किसी भी टेस्ट में। और वो किसी एक बहुत बूढ़े से होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखाया था, और उस डॉक्टर का एक छोटे से जगह पर डायग्नोसिस लिखा हुआ था, सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर्स, ये डायग्नोसिस था। और वो जो कुछ उसको हो रहा था उसको मेडिकल की भाषा में कहते हैं सोमेटाइजेशन, मन में इच्छाएं हैं, मन की बीमारी है पर शरीर के द्वारा प्रकट होती है। जैसे एक बहन आई थी, वो ऐसे 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 नॉन स्टॉप पूरी रात नॉन स्टॉप, और शरीर में बीमारी थी ही नहीं, बीमारी अंदर है मन में कहीं छिपी हुई। तो द लास्ट डिसीजन में क्या क्या करना है, ये सारी बातें पहले बताया। सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट करो, सूचनाएं, दूसरा ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, ए बी सी डी लिखना है ऑप्शंस को। तीसरा रिजल्ट देखना कि ये मैं निर्णय लेने के बाद मुझ पर क्या परिणाम होगा, फ्यूचर पर क्या परिणाम है, और मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उन पर इसका क्या परिणाम होगा। अगला जोर से परिणाम हो गया ना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रहा, और जब ऑप्शन बी, इंटेलिजेंट डिसीजन लेना है, सोच समझ के, इंपल्सिव नहीं लेना है। अगला, जो एक बार ले लिया अब भूल जाओ, दूसरा भी था, दूसरा था ही नहीं, अब यही जीवन है, इसी में आगे बढ़ते जाना है। अगला फर्स्ट वर्स्ट सिनेरियो, सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है, वो भी सोच लेना पहले ही, सबसे बुरा से बुरा क्या होगा। उसके बाद दूसरों से राय लेनी है, जैसे रामायण में दिखाया है, क्या राम को पता नहीं रावण को कैसे मारे, उसके सिर काट रहा है इधर इधर इधर, फिर भी नए नए सिर आ रहे हैं। विभीषण से पूछता है व्हाट शुड आई डू, क्या मैं करूं, विभीषण कहता है पेट में मारो, अमृत कुंभ यहां है, तब कहीं मारता है। तो हमेशा राय लेनी है, बड़ों से राय लेनी है, और ऐसे व्यक्ति से राय लेनी है जो हमसे एकदम अनरिलेटेड है, नॉन जजमेंटल, जिसको हमारे बारे में बहुत कम पता है, ऐसे व्यक्ति के सामने बताना ये चीजें हैं क्या किया जाए, तो वो कुछ ऐसी बात बताएगा शायद उसी में उत्तर आ जाएगा। अगला अमृत वेला, वो तो चलो पूरा निर्णय का ही प्रक्रिया में वो है, ये सारी चीजें अमृत वेला करनी है, और कितने बजे, 3:30 के पहले, बाद नहीं, बहुत पहले, रात के सन्नाटे में जीवन का निर्णय लेना होता है, सिबिलेंस ऑफ नाइट जिसको कहते हैं, रात में जो आवाज आती है ना, उसको इंग्लिश में सिबिलेंस कहते हैं, उस सिबिलेंस ऑफ नाइट में जीवन के निर्णय लेने होते हैं। इन द सिबिलेंस ऑफ नाइट टेक द डिसीजंस ऑफ थाय लाइफ, ऐसे ऐसे आवाज आता है ना रात में। अगला प्लान करना, अब डिसीजन ले लिया, अब क्या करना है, क्या मैं करूं, अभी यहां आ गई वहां आ गई फिर क्या करना है। अगला हो गया फायदा और नुकसान, फायदे क्या है नुकसान क्या है, इस पर भी गहराई से सोचना है। संसार में जाऊं या इधर रहूं, उधर अगर गई तो क्या होगा, इधर अगर रहूं तो क्या होगा, तो ये सारी स्टेप्स है। तो सारी कुमारियों ने अभी कल सुबह अमृत वेला डिसीजन लेना है, कौन सा पीछे पूछ लो कोई भी डिसीजन, कैसा भी डिसीजन, चाहे पढ़ाई का चाहे जीवन का, और बहुत इंटेलिजेंट, ऐसा किसी को ये ना कहे हमने तो पहले ही बोला था तुमको, तुम मानी नहीं, अब लो भुगतो। और एक लब से लास्ट महत्वपूर्ण बात, जो भी डिसीजन लो अपने आप को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। अब इसका जो परिणाम होगा, ना मेरे माँ बाप जिम्मेवार है, ना कोई बहन जिम्मेवार है, ना कोई भाई, कोई नहीं, सब कुछ मेरा है। अच्छा हुआ तो बाबा का और बुरा हुआ तो मेरा, अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। ये नहीं कहना तुमने बोला था ना यहां जाओ, अब देखो क्या हो रहा है मेरे साथ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ मेरे जीवन में, तुम ही पीछे पड़े थे ना, और जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। जब माइंड कन्विंस हो जाए कि हां मुझे करना है तो करना है, तो ठीक है। अच्छा, ओम शांति।